निर्णत सूतिकागारम शरीर नानास्त्र योजित ही तरह तरह के अस्त्रों के द्वारा उसे सुसज्जित कर दिया। ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े सब प्रकार से सरपंजरम एक बाणों का पिंजरा बना दिया, हवा भी उसमें क्या प्रवेश कर जाए, ऐसा उसने पिंजरा बना दिया और स्वयं बाण लेकर के खड़ा हो गया। अरे मारता तो मृत्यु है, मृत्यु आएगा तो मृत्यु को मैं देख लूंगा। लेकिन भगवान की कुछ और माया थी परीक्षित, वो बालक जन्म लिया और जन्म लेकर के देखते देखते ही इतने दिन तो वो बालक मरता था तो उसका शरीर तो पड़ा रहता था, अब की बार वो बालक ऐसा मरा कि शरीर भी गायब हो गया। जब वो शरीर गायब हो गया तब ब्राह्मण ने आकर के अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन धिक्कार है तुझे तेरी वीरता पर, तुझे इतना घमंड, और मैं भी कैसा मूर्ख हूं, धिकार तो मुझे मेरे को ही देना चाहिए कि मैंने एक नपुंसक की बात को मान लिया। नपुंसक तो बड़ा ही था अर्जुन, तो मैंने एक नपुंसक की बात मान ली। श्रद्धदे क्लीब कथनम, ब्राह्मण के वाक्य भाई झूठे कैसे होंगे। अरे जिसको प्रद्युम्न नहीं बचा सकते, अनिरुद्ध नहीं बचा सकते, बलराम नहीं बचा सकते, कृष्ण नहीं बचा सकते थे, और उसी बालक के बचाने के लिए हम लोगों ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। झूठ बोलने वाला अर्जुन धिक्कार है तुमको, यदि ऐसी बात है, तुमने कहा था कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले को तो जितना जल्दी अग्नि में जल करके मर जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए। ब्राह्मण का कहना सही था, अर्जुन ने सब बातें सुनी, इतना क्रोध आया अर्जुन को, तत्काल वो अपने विद्या से पहुंच गया यमराज जी के पास, और जाते ही यमराज जी को फटकारना चाहे, यमराज जी या तो उस ब्राह्मण का बालक दे दो नहीं तो आज इस बाणों से मैं तुमको मारूंगा। यमराज जी ने कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, मेरे पास नहीं, मैं सत्य बोलता हूं। फिर गए इंद्र के पास, इंद्र को जाकर के कहा कि महाराज उस ब्राह्मण का बालक आपके लोक में है कि नहीं, भैया हमारे पास नहीं। गए अग्नि लोक में, गए वायु लोक में, गए वरुण लोक में, गए रसातल में, और गए ना और नीचे लोक में, नागपृष्ठ में, नाकों के लोक में गए, सब जगह गए, कहीं पर भी वो ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। तब वे वापिस द्वारिका में आए और आकर के उन्होंने चिता बनाई, और चिता बना करके जो ही उसमें प्रवेश करने वाले ही थे त्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनका हाथ पकड़ा, अर्जुन क्या करते हो, क्या क्या करते हैं, आपका और हमारा इतने दिन का ही संबंध था, अब हम जा रहे हैं अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी प्रतिज्ञा हम नहीं रख सके, ठहरो, मैं ब्राह्मण एक ब्राह्मण का बालक नहीं, जितने मरे हुए सारे ब्राह्मण बालक दिखा दूं तो, कि फिर महाराज फिर तो बात ही क्या है, कि आओ मेरे साथ चलो, आज तुम्हारे ऐसे यश को बढ़ाऊंगा अर्जुन कि जिस ब्राह्मण ने इतना कष्ट पा करके, हृदय के अंदर इतना दुख लेकर के तुमको इतनी बातें कही हैं, मुझे इतनी बातें कही हैं, यही ब्राह्मण फिर आगे जाकर आपकी कीर्ति बढ़ाएंगे। ये ते न कीर्ति विमला मनुष्या स्थापयिष्यन्ति, अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ में बैठे, वो रथ बहुत ही दिव्य था, पश्चिम दिशा की ओर गया। अब देखो पश्चिम दिशा की तरफ भी जा रहे हैं ये रथ, क्योंकि अब भगवान की लीलाएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही हैं। सूर्य जैसे पश्चिम दिशा में, ऐसे भगवान की लीलाएं भी अब समाप्ति की ओर जा रही हैं। पश्चिम दिशा में गया, सात द्वीपों को और सात समुद्रों को और सात पर्वतों को पार करके, लोकालोक पर्वत को पार करके, और जब वो रथ गया तो आगे लोकालोक के बाद तो अंधेरा है, क्योंकि लोकालोक पर्वत के आड़ के कारण से सूर्य का प्रकाश वहां नहीं चलता। तब आगे आगे सुदर्शन चल रहे थे प्रकाश करते हुए, और ये घोड़े जा रहे थे, रथ जा रहा था, जाते जाते बहुत दूर जाने के बाद एक समुद्र आया, उसमें भी आगे आगे सुदर्शन चक्र है, पीछे पीछे ये रथ जा रहे हैं। पानी के अंदर भी वह रथ ऐसे ही जाता था जैसे वो थल के ऊपर जावे। ऐसे बहुत दूर जाने के बाद उस पानी के अंदर एक बहुत दिव्य एक महल देखा, बड़ा ही दिव्य है वो, कहते हैं अनंतम और अद्भुतम, बड़ा विचित्र वो महल देखा, और उस महल के अंदर एक दिव्याति दिव्य भगवान का स्वरूप देखा। यह अनंत भगवान का स्वरूप था, हजारों हजारों मणियों को धारण करने वाले सर्प ने अपने गोद के अंदर उनको ले रखा था। विभ्राजमानम द्विगुणोल्वणेक्षणम सीता चलाभम शितिकंठ जिह्वम, कहते हैं उस समय में उनका रंग अत्यंत गौर है, और उनका कंठ है वह भी बहुत सुंदर है, उनके भुजाएं बड़ी श्रेष्ठ है, उनका रंग है कि वो वर्षाकालीन मेघ के समान उनका स्वरूप है, और प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल रहा है, कमल के समान नेत्र उनके खिले हुए हैं और बहुमूल्य मणियां हैं, वे मणियां उनके क्रीट में और कुंडल में जगमगा रही है। आठ उनकी भुजा है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि उनके गले में है, वनमाला को धारण किया है। सुनंद नंद आदि प्रमुख पार्षद, सुदर्शन चक्र आदि भी मूर्तिमान होकर उनके पास में है और पुष्टि है, श्री है, कीर्ति है, अजा है, ये सब भगवान की जो शक्तियां हैं वो मूर्तिमती होकर उनकी स्तुति कर रही है। निषेव्यमाणम परमेष्ठिनाम पतिम, और सब परमेष्ठियों के भी स्वामी है, सबके वे स्वामी है। ऐसे अनंत भगवान के स्वरूप को भगवान ने देखा और अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ये रूप देखो। परीक्षित, वो अनंत भगवान कृष्ण से अभिन्न था। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर अपना एक अलग रूप बना करके लोगों से कहा कि देखो ये गोवर्धन पर्वत साक्षात बोलता है, इसको प्रणाम करो, ऐसे ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये अनंत भगवान है, इनको प्रणाम करो। ववंद आत्मानम अनंतम अच्युत है, भगवान ने अपने ही अनंत रूप को प्रणाम किया और अर्जुन से भी प्रणाम करवाया। और फिर वे ही अनंत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बोलते हैं, आहो श्री कृष्ण ही एक अनंत के रूप से वहां पर बोल रहे हैं। वो बड़े गंभीरता से बोले कि हे कृष्ण और हे अर्जुन, आप दोनों को देखने के लिए ही मैंने ब्राह्मण के सारे बालक यहां लाकर रखे हैं। पृथ्वी के ऊपर धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों ने अवतार धारण किया था, आप नर नारायण हो, लोगों को धर्म के अंदर लगाने के लिए और सत्पुरुषों के मन को आनंदित करने के लिए आप लोग वहां गए थे, अब आपका कार्य पूरा हो चुका है, अब आपको जल्दी हमारे पास आ जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, ये भगवान है ना अनंत भगवान, ये अनंत भगवान देखो हमको क्या बोल रहे हैं, और देखो ये अपने को ब्राह्मण के बेटे भी दे देंगे। इतने में भगवान ने कहा, देखिए ये आप ब्राह्मण के दस बेटे हैं, आप इन बेटों को ले जाओ और ले जा करके ब्राह्मण को सुपुर्द कर दो, केवल आपको अपने पास बुलाने के लिए मैंने ये लीला की थी। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों के पुत्रों को लेकर अर्जुन के साथ वापिस वे द्वारिका में आए, और द्वारिका में आकर के और सबके बीच में जो बालक जितनी अवस्था का होना चाहिए था उतनी उतनी अवस्था के बालक वो सब के सब ले जाकर के ब्राह्मण को दे दिए। इसके बाद भगवान वहां पर रहने लगे। तो ऐसी ऐसी भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हुई है। प्रभ वर्षा अखिलान कामान प्रजासु ब्राह्मण आदिशु, भगवान के शासन के समय में प्रजा बहुत सुखी थी, समय पर वर्षा होती थी, समय पर सबको यथायोग्य वस्तु मिल जाया करती थी। अब देखो अंतिम अध्याय है दसम स्कंद का, बहुत ध्यान दे रहे हो, भगवान पास में है लेकिन भगवान की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो भगवान के लिए विरही हो रही है। ये क्या है, ये साहित्य में दो प्रकार का प्रेम माना गया है, एक तो पास में रहने पर प्रेम और एक दूर रहने पर जो वियोग होता है उसमें प्रेम। तो गोपियों के साथ भगवान थे तब गोपियों का साथ का प्रेम रास उत्सव के द्वारा देखा, और जब भगवान मथुरा की तरफ रवाना हो गए तो पीछे से गोपियां विलाप कर रही थी, वो प्रेम दिखाया। लेकिन इनका प्रेम बड़ा ही विचित्र है, इन रानियों का। ये रानी भगवान के पास में रहते रहते भी वियोग का अनुभव करती हैं। प्रेम में ये ऐसा होता है, प्रेम में दूर है तो नजदीक दिखते हैं और नजदीक होते हैं तो भी दूर दिखते हैं। माता सुमित्रा से कौशल्या जी ने कहा कि बहन सुमित्रा, ये राम वनवास में गए या नहीं गए? कि क्यों बहन, ऐसे कैसे पूछते हो? कि देखो राम यदि वनवास में चले गए हैं तो फिर मुझे सब जगह राम ही राम क्यों दिख रहा है? इस दृष्टि से तो ये बात है कि राम वनवास में नहीं गए, और यदि राम वनवास में नहीं गए यही है तो मेरे छाती में जलन किस बात की हो रही है? सुमित्रा ने कहा कि देखो ये आप हरदम भगवान का राम का चिंतन करते हैं ना, उसका फल है। अच्छी बात। तो जहां प्रेम में दूर है तो ज्यादा स्मृति रहती है, और पास में है तो पास में रहते हुए एक भय रहता है कि ओह अभी तो पास में, थोड़ी देर में बिछुड़ जाएंगे, तो ये अतिशय प्रेम की बातें हैं। सुखदेव जी महाराज, अब देखो भगवान के दो प्रकार के प्रेमी रहे। गोपियां थी वो बाह्य दृष्टि से परकियां थी, लेकिन भीतर की दृष्टि से स्वकियां थी। और ये बाह्य दृष्टि से स्वकियां हैं पत्नियां, लेकिन भीतर से वे परकियां हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप को जब बताती हैं द्रौपदी के सामने कि हम अमुक जगह जन्म लिया और ऐसे ऐसे पराक्रम दिखाया और इस प्रकार से भगवान हमको लेके आए, चाहे रुक्मिणी ने बताओ, चाहे सत्यभामा ने बताओ, चाहे जाम्बवती ने बताओ, चाहे कालिंदी ने बताओ, चाहे भद्रा ने बताओ, चाहे लक्ष्मणा ने बताओ, अपना परिचय अपना संबंध अपने माता पिता के साथ बता रहे हैं। गोपियों ने किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हमारे माता पिता वहां के हैं, हमारे वो है, किसी ने कुछ भी अपने माता पिता का नाम तक नहीं लिया। माने बाहर से वे परकिया है, भीतर से वे स्वकिया है। और ये भीतर से परकिया है, बाहर से स्वकिया है, लेकिन फिर भी भगवान में इनका प्रेम है। कहते हैं द्वारिका तो भाई संपूर्ण रीतियों के अंदर बड़ी खिलती रहती है, वहां अच्छे पुरुष रहते हैं, स्त्रियां भी बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों को धारण करने वाली हैं। 16,000 से ज्यादा जितनी उनके स्त्रियां थी भगवान की, उतने ही महल थे। भगवान उन सब के साथ में खेलते थे, और खेलते खेलते उपगीय मानो गंधर्वई, कभी कभी गंधर्व लोग आते और वे भी भगवान की बहुत सी महिमा गा लेते थे। कहते हैं जल की भी क्रीड़ा करते, भगवान के ऊपर वे पत्नियां जल डालती, भगवान उनके ऊपर जल डालते। और उस समय में नट नर्तक जितने भी वहां गाने बजाने वाले थे, सबको भगवान बहुत इनाम देते थे। इस प्रकार से इनका जीवन चलता था। कहते हैं कि गत्यालापेक्षित स्मितई, भगवान के चलने से, बोलने से, देखने से, मुस्कुराहट से और हंसी मजाक की वाणी से वे स्त्रियां ऐसी प्रसन्न रहती थी कि उनको संसार का कोई चीज का अभाव खटकता ही नहीं था। अभाव है भी नहीं ऐसा, भगवान जो विराजमान, फिर भी वे ऐसा सब करती करती अकस्मात एकदम उदास हो जाती थी। परीक्षित रात में सो रही है, भगवान वहां महल में विराजमान है, फिर भी अकस्मात पलंग से उठती और उठकर के एकदम गंभीर हो जाती। वे स्त्रियां कभी समुद्र को देखती, कभी कुर्री को देखती, कभी वे चक्रवाकी को देखती और कुर्री को बोलती कि अरे कुर्री, तुझे नींद नहीं आती है क्या? तुम भी कृष्ण के मुखड़े पर इतने लट्टू हो गए कि उसके बिना तुम रह नहीं सके और विलाप कर रहे हो हमारे समान? आओ चक्रवाकी, हाँ तुम्हारा भाई बंधु कोई बिछुड़ गया है तभी तुम दुखी हो रहे हो हमारे समान, जैसे कृष्ण हमसे बिछड़ा हुआ है। मन में देखा कि कृष्ण यदि हमारे पास न रहे तो हमारी क्या दशा होगी, ऐसी वो मन में ही कृष्ण के वियोग को स्वीकार करके दुखी हो रही है। अरे समुद्र, तो रात दिन एकदम गर्जना करता रहता है लहरों के द्वारा, तुझे नींद नहीं आती, क्या तेरे पर भी कृष्ण का प्रभाव पड़ गया? अरे चंद्रमा, तू हमको जला क्यों रहा है? क्या कृष्ण ने तुम्हारी कलाओं को क्षीण कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तो तुम्हारे स्वरूप को बढ़ाने वाला, तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाला है। तो कच्चित मुकुंद गदितानि यथा वयम त्वम, जैसे कृष्ण की वाणी से हम लोग इस समय में विमुख हो गई, रहित हो गई, ऐसे तुम भी रहित हो गए क्या? मानो जाड़ चेतन चाहे पर्वत हो, चाहे वायु हो, चाहे कोयल हो, चाहे सिंधु पत्नी माने नदियां हो, इस प्रकार से सबके सामने वे स्त्रियां मनी मन में कल्पना करती थी कि मानो कृष्ण की वाणी हमारे पास नहीं है, कृष्ण की गति हमारे पास नहीं, चाल नहीं, उनका मुखड़ा नहीं, उनकी उनके बोली नहीं सुनाई दे रही, क्या करें, कहां जाएं, ऐसे वे दुखी हो रही थी। उनमें से एक ने हंस से कहा कि हंस स्वागतम आस्यताम पिब पय, आओ आओ हंस, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ दूध पियो। और देखो हंस, कुछ वासुदेव की कथा तो सुनाओ, आओ, तुमको पता नहीं है क्या वो यहां से चले गए और जहां भी गए वहां स्वस्थ तो है? नहीं नहीं नहीं, उसका प्रेम इतना चंचल है, इतना चंचल है कि एक जगह वो टिकता ही नहीं है। क्या कहा? वे हमको बुला रहे हैं वहां, कस्मात भजामो वयम, नहीं नहीं रहने दो, हम क्यों उसके लिए इतनी बात करें, कोई और कोई बात बताओ। इस प्रकार से हंस से बातें करते हैं। अर्थात हे परीक्षित, भगवान तो योगेश्वरों के ईश्वर है, ऐसा इनका बड़ा प्रेम है। और स्त्रीणाम प्रसय आकर्षते मने, कहने की बात इतनी है कि स्त्रियां तो कृष्ण के नाम से आकृष्ट हो जाती थी, कृष्ण नाम पड़ा ही इनका इसलिए कि सबको वे अपनी ओर आकर्षित करते थे। वस्तुतः गृहस्थ धर्म में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, ऐसा ही धर्म बताने के लिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया था। उनके बहुत पुत्र वे बताई दिए, उनमें 18 महारथी हुए थे, और उनके बाद अनिरुद्ध का जो बेटा हुआ वज्र, वो ही एक मूसल के कारण से बच गया था, मूसल के सांप से बच गया था, उसी को युधिष्ठिर जी ने मथुरा का राजा बनाया था। इस भगवान के कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसके बहुत धन नहीं हो, बहुत बेटा बेटी नहीं हो, लंबी चौड़ी आयु नहीं हुई हो, अथवा जिनके ब्राह्मण भक्त बेटा नहीं हुए हो, ऐसा कोई नहीं था, सब बड़े श्रेष्ठ थे। 3,88,00,000 तो केवल यदुवंशियों के गुरुजन थे पढ़ाने वाले, और 1 नील केवल सैनिक थे। अब 1 नील सैनिकों के माता पिता भी होंगे, स्त्री भी होंगे, पुत्र भी होंगे, कितने बड़े संख्या में यदुवंशी थे। कहते हैं इस प्रकार से भगवान ऐसे यदुवंश में लेकर, यदुवंश में तरह तरह की उन्होंने लीलाएं की, अवतार लेकर के यदुवंश का यश बढ़ाया है। देखो जब से भगवान अवतार लिए परीक्षित, तब से गंगा जी की महिमा कम हो गई। क्यों? गंगा जी एक जगह बहती है और भगवान की कथा सब जगह बहती है। गंगा जी के वहां जाने में हर आदमी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन परीक्षित भगवान की कथा रूपी गंगा है, उसमें सब आदमी आ सकते हैं। तीर्थम चक्रे नृपोवनम यदजन यदुसु स्वसरित पाद शौचम, उनके चरणों का जो जल था सबको पवित्र कर रहा है, उससे भी ज्यादा पवित्र उनकी कथा कर रही है। एक बार भी यदि कोई उनके अमंगल नाश के लिए नाम ले लेता है, उनका नाम ले लेता है, तो भाई उसका सारा जीवन सफल हो जाता है। फिर उनकी कथा सुन करके नाम लेवे तो फिर कहना ही क्या है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परसत स्वैर दौरभीरस्यन्न धर्मम। क्या बतावे, भगवान का जो अवतार है ये सारे संसार के कल्याण के लिए, मंगल के लिए हुआ है। देवकी के यहां जन्म लेने वाले भगवान की बारंबार जय हो। क्या बतावे, स्थावर जंगम सब प्राणियों ने उनके चेहरे का दर्शन किया है, और जिन जिन्होंने भी उनके चेहरे का दर्शन किया उनके मन में भगवान से मिलने का प्रेम उमड़ा ही है। इस प्रकार से संत जनों की रक्षा के लिए उन्होंने तरह तरह से लीलाएं की है, यदुवंश का कीर्तन किया है, अर्थात यदुवंश की महिमा बढ़ाई है, और अंत में भगवान मर्त्यस्तयानुसममेदितया मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद वनम क्षितिभुजोपि ययुर यदर्था। ऐसी विचित्र इनकी कीर्ति फैली है कि बड़े बड़े राजाओं ने अपना ऐश्वर्य से भरा हुआ राज्य भी छोड़ दिया, और इस कृष्ण कथा में पागल होकर के उन्होंने जंगलों में जाकर उसी का आश्रय लिया था। अब 11वां स्कंद प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाते गाते सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद के 90 अध्याय कह चुके, अब 90 अध्याय बीत चुके, अब 11वां स्कंद प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान देवे, 11वें स्कंद का पहला अध्याय है, उसको 11वें स्कंद में क्यों रखा, यहां पहले 10वें में ही दे देते, क्यों, भगवान की लीला ही है इसमें। पर देखो बड़ी विचित्र बात है, एकादश स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद, और जो एकादश स्कंद की कथा को सुन लेता है तो मुक्ति बंधी हुई है इस शर्त से कि उस जीव के पास उसको आना पड़ेगा, इसलिए एकादश स्कंद मुक्ति का स्कंद है। तो मुक्ति का स्वरूप बताया है कि मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब जीव अपने कल्पित स्वरूप का त्याग करके, अन्यथा स्वरूप का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में आता है तब वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये मुक्ति का लक्षण है, अर्थात जीव के ऊपर जितने शरीर आदि का अध्यास है दिखाई देता, ये केवल जीव की कल्पना के कारण से, उपाधि के कारण से है। ये उपाधि जीव ने अपनी तरफ से बनाई है, तो जीव को अपनी तरफ से ही इसका उपाधि का त्याग करना होगा, और जब ये निरुपाधिक स्वरूप में स्थित होता है तो इसकी मुक्ति हो जाती है। अब आइए इस कथा में सुखदेव जी महाराज एक बहुत रोचक आख्यान से ये बताना चाहते हैं कि जीव अपनी तरफ से कैसे बंधता है संसार में और कैसे उसकी मुक्ति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने दैत्यों का वध कर दिया, कौरवों का और पांडवों का युद्ध करा करके पांडवों की विजय हो गई, कौरवों का नाश कर दिया, बहुत बड़ा पृथ्वी का भार था वो समाप्त हो गया, फिर भी भगवान की दृष्टि में अभी पूरा पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि कौरवों की पक्षपाती कौरवों की सेना तो नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी अभी ये यदुवंशी है, ये यदुवंशी जब तक रहेंगे तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ऐश्वर्य से, मेरे बल से और मेरी शक्ति से उद्धत होकर, उद्दंड होकर कहीं अनाचार कर सकते हैं। अतएव भगवान ने अपने मन में संकल्प किया कि ये आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद पृथ्वी का पूरा भार हल्का हो जाएगा और उसके बाद हमको हमारे लोक में जाना है, ऐसी भगवान की इच्छा थी। और परीक्षित, भगवान की इच्छा कोई जीव के समान व्यर्थ तो होती नहीं, क्योंकि भगवान जीव के समान किसी के परतंत्र नहीं और भगवान की इच्छा में भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। जीव की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है कि जीव की इच्छा स्वार्थ को लेकर है, दूसरों को लेकर नहीं है। भगवान की इच्छा क्यों पूरी होती है कि भगवान की इच्छा में लोगों का कल्याण निवास करता है, इसलिए भगवान की इच्छा पूरी होती है। तो सत्य संकल्प ईश्वर है, भगवान का संकल्प सत्य है। उन्होंने जब विचार किया कि आपस में लड़ ले में, तो बस फिर क्या था, फिर भावी ब्राह्मणों का इस यदुवंश को साप लग गया, इस साप के कारण से उनका विनाश हो गया। और भाई सारे संसार में जो सबसे सुंदर माने जाते थे कृष्ण, और उन कृष्ण की ऐसी दिव्य झांकी थी जो सब दर्शन किया करते थे, अंत में भगवान ने अपनी उस झांकी को भी समेट लिया और अपने झांकी की जगह अपनी पवित्र कीर्ति है, अपना यश है, अपनी कथा है, वो संसार में छोड़ दी और विचार किया कि जो काम मैंने यहां अवतार लेकर किया था उससे ज्यादा काम मेरी कथा के द्वारा होगा, ऐसा विचार करके भगवान अपने धाम में चले गए। राजा ने पूछा कि महाराज ये यदुवंशी तो ब्राह्मणों का सदा सम्मान करते थे, इनको ब्राह्मणों का श्राप क्यों लग गया? दूसरी बात है, यदुवंशी तो कृष्ण चेता थे, कृष्ण के अंदर उनका चित्त लगा हुआ था, तो जो कृष्ण के अंदर चित्त लगाने वाले हैं उनको ब्राह्मण कभी श्राप देते ही नहीं है, क्या ऐसा अपराध हो गया यदुवंशियों का जिसमें उनको ब्राह्मण का श्राप झेलना पड़ा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ था ना, इसी कारण से ब्राह्मणों का श्राप उनको लगा। भगवान के मन में थी, भगवान के चित्त में बात थी कि ब्राह्मणों का श्राप लगे तो ठीक है, क्यों कि भाई भगवान तो देखते हैं कि मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं मैं ही लड़ाई करके मारूं तो ये मेरे द्वारा मारना नहीं। सैव पापिष्ठ तमो लोके यह कुरियात कुल नाशनम, जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस जाति में हमने जन्म लिया, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, उसी धर्म का उसी जाति का हमारे द्वारा नाश करे इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने द्वारा तो यदुवंश का नाश करना उचित नहीं समझा, लेकिन यदुवंशियों का आदर्शन हो, यदुवंशी समाप्त हो जाए, इनके मन में ये बात तो थी, अतः ब्राह्मणों ने श्राप दिया उनको। बात क्या थी कि ब्राह्मण लोग एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आए द्वारिका में, द्वारिका में दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि भगवान तो सबसे सुंदर जो ठहरे भीतर से भी और बाहर से भी, तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आए भगवान के चरित्रों को गाते गाते, और वे आकर के वसुदेव जी के घर में आकर वासुदेव का दर्शन किए, और वासुदेव का दर्शन करने के बाद वे पिंडारक क्षेत्र में गए। पिंडारक क्षेत्र में गए, बड़े अच्छे अच्छे ऋषि थे, उनमें विश्वामित्र जी थे, असित जी थे, कण्व थे, दुर्वासा थे, भृगु थे, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब थे वहां। तो ये सब ऋषि भगवान का दर्शन करके पिंडारक क्षेत्र की तरफ गए। वहीं पर क्या हुआ कि ये छोटे छोटे बालक सांब आदि ये सब खेल रहे थे, खेलते खेलते इनको मिले तो संत, संतों के मिलने पर इनको करनी तो चाहिए थी ज्ञान की बात, और संत मिले तो इनके साथ इन्होंने विनोद किया, छेड़खानी की, क्या छेड़खानी की? कि उन्होंने सांब को एक स्त्री का कपड़ा पहना दिया, स्त्री का कपड़ा पहना दिया और पेट पर बहुत से कपड़े रख दिए, और कपड़ा रख करके और उसके घूंघट डलवा करके, और वे सारे के सारे बालक ले गए ऋषियों के सामने और जाकर के निवेदन किया कि महाराज ऐसा पृच्छति, ध्यान देना वो सांब था पुरुष और उसको स्त्री बनाया गया, और स्त्री बना करके संतों के पास ले जा करके कहा कि महाराज ये गर्भवती है, ये आपसे पूछना चाहती है कि इसके लड़का होगा अथवा लड़की होगी, ये आप बता दीजिए। अब ऋषि तो भाई अमोघ दर्शन है, ऋषियों को तो सब बात अपने आप पता भी चल जाती है। जनिष्यति वो मंदा, उन्होंने उस समय में कुपित होकर के साप दिया कि अच्छा हमारे साथ तुम ऐसी छेड़खानी करते हो, जाओ न तो लड़का पैदा होगा न लड़की पैदा होगी, इसके तुम्हारे कुल का नाश करने वाला एक मूसल पैदा होगा। तो मुसलम कुल नाशनम, तो वो बहुत डर गए बेचारे बालक, वो अलग ले जा करके उसके कपड़े वपड़े सब उतार करके पेट की जो गांठड़ियां थी कपड़े थे हटा करके देखा तो वस्तुतः उसमें एक लोहे का मूसल निकल आया। अब देखा कि भाई ये तो अमोघ दर्शन तो है ही ऋषि मुनि और अमोघ इनकी वाणी है। अब देखा कि अरे अपने तो मजाक कर ली, मजाक मजाक में देखो कितनी बड़ी बात हो गई, खेल खेल के अंदर हमने आफत मोल ले ली। ध्यान देना ये पहला स्कंद है, जीव कैसे फंसता है। देखो जीव शरीर को मैं मानता है, मेरा मानता है, जैसे सांब था है तो पुरुष लेकिन अपने को स्त्री बनाया, ऐसे ही हम है तो परमात्मा के स्वरूप लेकिन मानते हैं कि हम गृहस्थी हैं, कि हम अमुक हैं, कि हम अमुक हैं, ये क्या है, ये सांब की तरह से स्त्री का आवरण अपने पे ले लिया, ऐसे ही शरीर का जाति का इनका आवरण हमने अपने ऊपर ले लिया। अब संत महात्मा मिले तो उनसे ज्ञान लेना चाहिए, हम संत महात्मा मिलते हैं उनसे मजाक विनोद करने लग गए, और उसी मजाक में विनोद में खेल खेल में जैसे जीव को खेलने के लिए चीजें मिली, मकान मिला, धन मिला, कुटुंब मिला, संपत्ति मिली, जायदाद मिली, व्यापार मिला, ये सब केवल एक खेलने का साधन मिला था। इस खेलने के साधन में ऐसा मस्त हो गया जैसे वो बालक खेल खेल में नया खेल कर लिए, ऐसे ही भगवान ने मनोरंजन के लिए चीजें दी थी, इसमें उन्होंने साप ले लिया बालकों ने, ऐसे जीव संसार में फंस गया। तो क्या हुआ कि अयस्मयम लोहे का उनको मुसल मिला। अब देखा कि लोग हमको क्या कहेंगे, वो चुपचाप अपने घर आए, घर आकर के उन्होंने अपने माताओं से पिताओं से कहा, तो फिर वो सभा के अंदर मुसल ले जाके रख दिया। उग्रसेन वगैरह सभा में सब बैठे हुए थे, देखो कोई भी उनके ऊपर कष्ट आता था यदुवंशियों पर तो श्री कृष्ण को वो सभा में बुलाते थे, भगवान श्री कृष्ण आते थे और हर विषय पर विचार विमर्श होता था, लेकिन कोई होनार की बात थी कि आज श्री कृष्ण को किसी ने बुलाया भी नहीं, और भगवान ने उनके मन में ऐसी वृत्ति दे दी कि आज हमको कोई बुलावे ही नहीं। सब ने देखा कि कृष्ण को क्या बुलाना है, तो सामान्य बात है। निर्णय कर लिया कि इस कुल को, इस मूसल को जो कि कुल का नाशक बताया गया है, इसको पीस करके नष्ट करके चूर्ण करके और समुद्र के अंदर फेंक देंगे, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए मूसल रहेगा ही नहीं, तो हमारा नाश कैसे होगा, ऐसा उन्होंने विचार कर लिया। विचार करके उसको यूं घिस घिस करके जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिस करके एकदम महीन चूर्ण कर लिया, और जितना वो अंगुली में पकड़ने में आता है उससे भी घिसते घिसते बहुत छोटा सा लोह का कण था, उस कण को भी उन्होंने साथ में ही समुद्र के अंदर डाल दिया। अब समुद्र के अंदर डाल देने पर वो जो लोहे का चूरा था वो लहरों से समुद्र के किनारे आ गया, किनारे आ गया तो वहां पर एरक नाम का घास उग गया, और इधर वो छोटा सा लोह का कण था उसको एक मछली ने गिट लिया, और वही मछली एक बार एक शिकारी के कब्जे में आ गई, शिकारी ने उसके पेट को चीरा, चीर करके लोहार को बेच दिया, और लोहार ने वो लोहा बाण बनाने वाले को बेच दिया, और बाण बनाने वाले से एक शिकारी ने वही बाण खरीद लिया और अपने पास रख लिया। ये तो बात है पहले अध्याय की। भगवान को इन सब बातों का ज्ञान था लेकिन कर्तुम नैच्छत विप्रशापम, ये ब्राह्मण के शाप को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, इसलिए काल रूपी अन्व मोदत है, भीतर ही भीतर उन्होंने अनुमोदन कर दिया कि ठीक है जो कर रहे हैं सो बढ़िया बात है। इस प्रकार का ये पहला अध्याय है। समझ गए होंगे कि जीव संसार में फंसता है तो वो देखता है कि हमको कोई फंसाने वाला है। अरे जीव को फंसाने वाला कोई नहीं है, जीव स्वयं ही संसार में फंसता है। जैसे सांब वगैरह बालक खुद ही खेल खेल में फंस गए, ऐसे जीव फंस जाता है। और फंस भी गया तो यदि भगवान को याद कर लेते तो अच्छी बात थी, भगवान को उन्होंने याद नहीं किया। अरे कुलनाश जैसा उनके ऊपर संकट आया है लेकिन उन्होंने उस संकट को कुछ संकट समझा ही नहीं और अपने बुद्धि के अभिमान से उसका कोई उपाय न करके चूर्ण बना के उसको फेंक दिया, यही उपाय समझा। अरे सबसे बड़े संकट निवृत्ति का साधन भगवत स्मृति है, वो भगवत स्मृति उन्होंने रखी नहीं, इस कारण से उनको कोई उपाय मिला भी नहीं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ये सदा ही द्वारिका में आते ही थे। एक बार वसुदेव जी आप आते हो और भगवान को कुछ सुना सुना करके चले जाते हो। आप ऐसा कीजिए, आप जैसे संत महात्मा है जीवों पर कृपा करने के लिए ही संसार में फिरते हैं, आप हमको भागवत धर्म सुनाइए। माने भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, ये आप हमको बताइए। क्योंकि आप जैसे संत महात्मा संकट में पड़े हुए जीवों को ऐसी सरलता से बात बताते हैं कि जिससे उनका बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा कि ओह वसुदेव जी महाराज बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखो यूं तो भागवत धर्म बहुत ही है, सुना है पढ़ा है, जिन्होंने ध्यान दिया है और जिस धर्म का अनुमोदन किया गया है कहते हैं उस धर्म का पालन करने से विश्व के साथ द्रोह करने वाला व्यक्ति भी भागवत हो जाता है। फिर भी हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। देखो ब्रह्मा जी के बेटा हुए मनु जी, मनु के हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि और नाभि के हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 बेटों में सबसे बड़े हुए अपने भरत जी और 100 बेटों में 81 हो गए कर्मकांड के द्वारा ब्राह्मण और 9 हो गए योगेश्वर और 9 हो गए राजा। तो कहते हैं कि जो योगेश्वर हो गए वे कवि है, हरि है, अंतरिक्ष है, प्रबुद्ध है, पिप्पलायन है, आविर्होत्र है, द्रुमिल है, चमस है और करभाजन है। ये 9 इनका नाम है। ये किसी भी लोक में कहीं पर भी जा आ सकते थे, ऐसी इनको शक्ति मिली हुई थी। एक बार महाराज निमि का यज्ञ चल रहा था, ज्ञान यज्ञ चल रहा था। उस ज्ञान यज्ञ के अंदर वे ऋषियों को संतों को बुलाए हुए ज्ञान की चर्चा कर ही रहे थे, इतने आकाश में से ये 9 के 9 योगेश्वर जगमगाते हुए अग्नि के समान दे दीप्यमान ये आकाश मार्ग से जाते जाते राजा निमि के ज्ञान यज्ञ में अपने आप आ गए। देखो सत्संग करने की रुचि हमारी होनी चाहिए, रुचि हो जाने के बाद संत महात्मा बुलाने से नहीं स्वतः ही भगवान के विधान से आ धमकते हैं और आकर के वे अपनी बात कह जाते हैं। राजा निमि ने बुलाया नहीं था इनको, उसने तो अपने पवित्र भाव से आयोजन कर लिया और उसी आयोजन के कारण से ये 9 योगेश्वर आए। कहते हैं उस 9 योगेश्वर जब सामने आए तो विदेह के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, राजा निमि के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। राजा निमि ने प्रार्थना की कि ओहो आप तो भगवान के पार्षद हैं महाराज, सारे संसार को आप पवित्र करने वाले हैं, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और प्रतिक्षण ये नष्ट हो रहा है और बड़ा दुर्लभ है, इसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ संत महात्माओं का संग है। मानव जीवन दुर्लभ और मानव जीवन में भी सत्संग का मिलना दुर्लभ, और बड़ा अच्छा किया महाराज आप आज आ गए हैं। संत महात्मा मिल जाए तो उनसे सत्संग की बात पूछनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है सेवधिर निर्णाम, सत्संग है ये मनुष्य की सेवधि है, निधि है, खजाना है, ऐसा खजाना है जो कभी खुटने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे आज हम सत्संग कर लेंगे तो हम बहुत बड़ा भारी धन कमा लेंगे। महाराज हमको भागवत धर्म बताओ, जो संत महात्मा जिस धर्म का पालन करते हैं वो हमको बताओ, यदि आप उचित समझते हैं तो। यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः, कहते हैं भगवान इसी भागवत धर्म से प्रसन्न होकर के अपने आप को भी दे देते हैं, वो भागवत धर्म बताओ। नारद जी महाराज कहने लगे, देखो वसुदेव जी, जब राजा निमि ने ये प्रश्न किया, नौ प्रश्न करेंगे और नौ योगेश्वर एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला ही पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है, तो पहले ऋषि है, पहले योगेश्वर है कवि। कवि ने उत्तर दिया कि मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यं उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। सबसे पहला भागवत धर्म है कि जो व्यक्ति जैसा है, जहां है, जो भी किया है और जो भी कर रहा है, उसके साथ वो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरणों का सहारा ले लेवे, ये सबसे पहला धर्म है। भगवान की शरणागति है या उसके सारे भय को दूर कर देने वाली है। ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि जिससे मनुष्य आसानी से अपना कल्याण कर सकता है। ये भागवत धर्म कम नहीं है राजन, आदमी आंख बंद करके इन भागवत धर्म का पालन करे और दौड़े चले इस धर्म में, तो कहीं पर भी टक्कर खाने की गिरने की संभावना नहीं है। तो क्या करें महाराज, एक तो भगवान की शरणागति और दूसरा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, अपने स्वभाव से जो कुछ भी वो काम करे, वो सब का सब परमात्मा के लिए अर्पण कर देना चाहिए कि हे नाथ, ये सब आपके अर्पण है। देखो, जब इस जीव के हृदय में ईश्वर के अतिरिक्त और जगत का अभिनिवेश होता है, तभी इसकी बुद्धि भ्रमित होती है, तभी वो माया से इधर उधर घूमता रहता है और तब तक इसको शांति नहीं मिलती है। और चलो, यदि ईश्वर से विमुख हो भी गया, तो जब से इसको ज्ञान हुआ कि मैं विमुख हो रहा हूं, तब से वो भगवान का भजन करना चालू कर देवे और अपने मन को संसार के भटकाव से बिल्कुल समाप्त कर देवे। भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की कथाओं को गावे और भगवान के नाम लेने में लेश मात्र भी लज्जा का अनुभव न करे। इतना चित्त प्रसन्न हो जाए, इतना प्रसन्न चित्त हो जाए कि कभी भगवान की लीलाओं में वह हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए। लोग चाहे उसको उन्मादी बोले, पागल बोले, उसको लोगों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, वह लीला में तल्लीन हो जाए। और जो कुछ चार आचार दिखाई देता है, वो सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझ करके प्रणाम करे। खं वायुमग्निं सलिलां महीं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरेत् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आकाश अग्नि है, सूर्य है, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, साक्षात भगवान का कलेवर है, भगवान का स्वरूप है, ऐसा मान करके और उनको प्रणाम करें। देखो, ऐसा करने से क्या होता है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषय त्रिक एक काल है। जैसे आदमी भोजन करता है, तो भोजन करने से भूख की निवृत्ति होती है और साथ ही साथ उसको पुष्टि का अनुभव होता है। तो भूख की निवृत्ति और शरीर के अंदर पुष्टि और मन के अंदर संतुष्टि, तीन चीज पैदा होती है, तुष्टि, पुष्टि और क्षुदापाय है। इसी प्रकार से जब वो भगवान की तरफ चलता है, तो उसके भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है तो फिर स्वरूप का ज्ञान होता है और संसार से वैराग्य होता है। परेशानुभव माने परमात्मा का अनुभव होता है, एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। एकादश में आ जाएगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के विषय में जैसा एकादश में स्पष्ट है ऐसा अन्यत्र स्पष्ट नहीं है। कहते हैं कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, वैराग्य भक्ति और परमात्मा में प्रेम, ये स्वतः स्वाभाविक हो जाएंगे। इस प्रकार से भाई ये भागवत धर्म है, इनका आश्रय लेने वाला व्यक्ति सुखी होता है, शांति को प्राप्त होता है। राजा ने पूछा कि महाराज जो भागवत है उनको हम कैसे जाने कि ये भागवत है। भागवत लक्षण देखो, भागवत का अर्थ यहां है भागवत माने भगवान के भक्त, उनका धर्म माने उनका व्यवहार, और भागवत माने भगवान के भक्त और उनकी पहचान क्या है उसके विषय में प्रश्न है। और पहले बताया कि भागवत जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, बता दिए। एक तो शरणागति, एक अपने कर्मों का समर्पण, और एक परमात्मा का चिंतन, उनके लिए कथा सुनना, उनका नाम लेना, और सब प्राणियों को भगवान का स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करना, ये बता दिया साधन। अब बता रहे हैं कि भाई भगवान के भक्त कैसे होते हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्येत, सब प्राणियों के अंदर एक भगवान को देखे, वो सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। भूतानि भगवती आत्मनि, आत्मस्वरूप परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों का निवास है ऐसा मानने वाला उत्तम भागवत होता है, सबसे ऊंचा भागवत वही होता है। और दो नंबर का वो होता है कि जो भगवान के साथ में प्रेम करता है, भगवान के अधीन रहने वाले संतों के साथ मित्रता करता है, और अज्ञ जन है उनके साथ कृपा करता है, भी बिचारे जानते नहीं इनके ऊपर कृपा करो, और जो द्वेष रखने वाले उनकी उपेक्षा करता है, ऐसे जो विषम बर्ताव करता है भगवान के साथ, भक्तों के साथ, भगवान के मानने वालों के साथ, भगवान को न मानने वालों के साथ, ये जो अलग अलग ढंग से व्यवहार करता है वो वास्तव में दो नंबर का भक्त होता है। और जो पूजा के समय तो भगवान का ध्यान भी करता है, मूर्ति की पूजा भी करता है, लेकिन आगे जाकर न भगवान के भक्तों का आदर करता है और न दूसरों का सम्मान करता है, वो तीन नंबर का भक्त होता है। और सुन ला तुम, विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के विषय मिलते हैं। इनमें जो प्रतिकूलता में नाराज नहीं होता, अनुकूलता में प्रसन्न नहीं होता, वो श्रेष्ठ भगवान का भक्त होता है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, इनके लिए अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे शरीर का जन्म होना और शरीर का मरना। और प्राण को भूख और प्यास लगती है तो कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी तृप्ति होती है, प्राणों का धर्म है। मन का धर्म क्या है कि कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ऐसे समय में जो किसी प्रकार से सुखी और दुखी नहीं होता है, चाहे मरने की स्थिति आ जाए और चाहे उसके पास धन चला जाए, चाहे कितने कोई और प्रतिकूलता आ जाए, ऐसी स्थिति में भी वो घबरावे नहीं, वो श्रेष्ठ भगवान का भक्त होता है। जिसके चित्त में कभी भी कामनाओं का अंकुर भी पैदा नहीं होता है, वो श्रेष्ठ भक्त होता है। जिसको अपने जाति का घमंड नहीं, जिसको अपने धन का घमंड नहीं, जिसको ऐश्वर्य का घमंड नहीं, वो भगवान का उत्तम भक्त होता है। और जिसके मन में तेरा मेरे का भेद खत्म हो गया है वह उत्तम प्रकार का भक्त होता है। त्रिभुवन के वैभव को देख करके भी जिसका मन लेश मात्र भी विचलित नहीं होता वो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। भगवान के चरणों का ध्यान करते उस समय में भगवान के चरणों का जो नख है और नख की जो कांति है, वो कांति जिसके हृदय में आकर बैठती है उसका सारा संताप दूर हो जाता है। वो एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है, वो श्रेष्ठ भक्त होता है। भगवान के विषय में आप जैसा बता रहे हैं, ये क्या है, ये अमृत है, इसकी घूंट तो पीते चले जाओ। हम संसार की बहुत सी बातें सुने, सुनने के बाद संतोष नहीं होता है, लेकिन भागवत धर्म सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, और श्रेष्ठ भागवत कौन है इस विषय में सुन रहे हैं, तो हमारे बहुत संतोष हो रहा है। तो महाराज बताइए भगवान की माया क्या है। कहते हैं देखो जी, आप तीसरे नंबर के अंतरिक्ष जी हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान इतने महाभूतों को बनाए हैं कि नहीं, इतने प्राणियों को बनाए हैं कि नहीं, ये क्यों बनाए हैं, ये बनाए उन्होंने अपने भक्तों के लिए। ये संसार किसके लिए बनाया है, ये संसार भगवान ने भक्तों के लिए बनाया है। तो कहते हैं कि यहां पर पापी क्यों हो गए, तो पापी हो गए। लोग यहाँ जन्म लेने के बाद भगवान के साथ विश्वासघात करने के बाद यहाँ पापी हुए हैं, इसलिए ये संसार स्वयं मात्रात्मा प्रसिद्ध है, अपने भक्तों के लिए भगवान ने बनाया था। वादा तो हमने यही किया था कि अब हम भगवान का भजन करेंगे, सुना था आपने कपिल उपाख्यान में। लेकिन जो आदमी वादा खिलाफी करता है, विश्वासघात करता है, उसकी क्या दशा होती है। इसीलिए मरने के बाद और जीवों को इतना कष्ट नहीं होता जितना मनुष्य को उन कर्मों के फल से कष्ट होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है आगे जाकर। तो भगवान ने बनाया संसार अपने भक्तों के लिए। उन्होंने क्या किया कि भगवान पहले एक रूप से प्रकट हुए, विराट रूप से, और फिर हृदय से प्रकट हुए, फिर 10 इंद्रियों से प्रकट हुए, और तरह तरह से प्रकट होकर के भगवान तरह तरह के जीव बनकर के और विषयों को ले रहे हैं। तो ये भगवान की माया है। भगवान सब प्रकार से कर्म करते हैं और कर्म का फल नहीं भोगते हैं, ये भगवान की माया है। और भगवान जीवों के रूप में कर्म करते हैं और तरह तरह के लोकों में जाकर कर्म का फल भोगते रहते हैं, ये भी भगवान की माया है। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो विषयास्वादन कर रहे हैं वो कोई परवशता से करते हैं, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यही है कि सब कुछ भगवान का स्वरूप होते हुए भी हम हमारी दृष्टि में कहां जा रहे हैं वो देखनी है। वो दृष्टि सुधार रहे कि भाई जीव रूप से भी हम भगवान ही है, इसलिए अपने को कर्ता और भोक्ता न मान करके अपने को अपने स्वरूप में रहना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अस्तु, वे भगवान संसार को बनाते हैं तो ये बनाना माया है, और लीन करते हैं तब कि सैकड़ों वर्षों तक यहां अकाल पड़ता है, बरसात यहां होती नहीं, प्रजा मरती रहती है, भगवान की माया है। कोई कहते हैं हम विषयों का आस्वादन करते हैं भगवान की माया है, तो भगवान कहते हैं नरकों में डंडा पड़ता है, वो भी मेरी माया है। माया है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो सतवर्षा या अनावृष्टि, कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक अनावृष्टि रहती है, भगवान की माया है। फिर हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी धाराएं पड़ती हैं तो वो भी भगवान की माया है। और फिर ये पृथ्वी है ये जलमग्न हो जाती है, भगवान की माया है। जल है ये अग्नि के अंदर लीन हो जाता है, वो भी भगवान की माया है। फिर अग्नि को वायु खींच लेता है, वायु को आकाश खींच लेता है, आकाश को अहंकार खींच लेता है, अहंकार को महतत्व खींच लेता है, ये क्या, ये भगवान की माया है। यही भगवान की माया है जो स्वर्ग करने वाली है, और यही भगवान की माया है कि वापिस स्वर्ग को अपनी ओर खींचने वाली है। कि महाराज अब माया का तो ज्यादा विस्तार से वर्णन मत करो, देख लिया, अब माया से हमारा छुटकारा कैसे हुए ये आप हमको बता दीजिए। तो प्रबुद्ध जी कहने लगे कि देखो छुटकारा तो भाई दवाई तो अपने पास में है, अपनी जेब में पड़ी है, लेंगे तब रोग दूर होगा, पास में दवाई पड़ी है लेंगे नहीं तब तो क्या होगा। क्यों जी ऐसी क्या बात है? कि नहीं नहीं भगवान ने जितने आदमियों को मनुष्य बनाया है उनके पास में भगवान ने सामग्री पूरी दी है। जैसे माँ है बेटे को कहीं भेजती है, स्कूल भेजती है तो टिफिन भेजती है, साथ में खाने पीने का सामान भेजती है, और यात्रा में जाता है बालक तो अभी उसके लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध करके जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान ने हमारे साथ कल्याण की सामग्री का एक टिफिन बांध रखा है, वो दिया है, हम ध्यान नहीं देते, उस टिफिन को खोल करके देखते ही नहीं तो हम यात्रा करते हुए भूखे हो रहे हैं। क्या बात है महाराज, ऐसी कौन सी शक्ति दी? ऐसी शक्ति दिए आओ तो वो शक्ति बताइए। कि बताते हैं कि कर्मण्यारभमाणानां दुखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाके विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां। कोई ऐसा संसार में मनुष्य नहीं है कि जो सुख की प्राप्ति के लिए कार्य न करे और दुख के नाश के लिए काम न करे। सब इसीलिए कर रहे हैं दुख का तो नाश हो जाए और सुख हमको मिल जाए, लेकिन न तो उनके दुखों का नाश होता है और न उनको सुख की उपलब्धि होती है। तो क्या करना चाहिए कि मनुष्य को काम करने से पहले पहले इसका अंत में परिणाम क्या होगा वो देखना चाहिए, फल की तरफ नहीं परिणाम की तरफ। माने हम दुख के नाश के लिए काम कर रहे हैं तो क्या इस कार्य से दुख का नाश होगा? क्या हम जिस सुख की प्राप्ति के लिए काम करने जा रहे हैं क्या इससे सुख मिलेगा? यदि ऐसे लोग विषयी पुरुष जो विषयों के संबंध से सुखी होना चाहते हैं उनको मैंने ऐसी भगवान ने ऐसी दृष्टि दी है कि वे इसके परिणाम के ऊपर विचार करें। कि हमको तो सुख दिखता है, कि तुमको दिखता है वो उधर ध्यान मत दो, तुमको देखना चाहिए वो चीज, तुमको देखना चाहिए। कि भाई धन में सुख है कि नहीं, नहीं नित्यार्जितेन वित्तेन, ये धन है ये किसी को भी आज तक सुखी नहीं कर सका, आगे भी ये किसी को सुख नहीं कर सकेगा, इसलिए मनुष्य को धन देख धन के अंदर इसको देखना चाहिए कि आगे कष्ट ही कष्ट देने वाला है। ऐसे ही घर है, स्त्री है, पशु है, वैभव है, मान है, आदर है, इतना ही नहीं स्वर्ग आदि लोक भी है, ये सब के सब नश्वर है और यहां पर भी हमको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। जो अच्छे संत महापुरुष हैं, शाब्दे परेच निष्णातम, जो शाब्दिक शास्त्र शास्त्र में भी निष्णात हो और शास्त्रोक्त जो परमात्मा है उसका जिन्होंने अनुभव किया है उसमें भी वो निष्णात हो, उनके साथ जाकर संग करना चाहिए और बिना किसी कपट भावना से साधन भजन में लगना चाहिए। मन को विषयों से असंग रखना चाहिए और प्राणियों के साथ मैत्री का और दया का बर्ताव करना चाहिए। शरीर को पवित्र रखना चाहिए, स्वाध्यायम स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है और सुख दुख में समता है, इसको देखना चाहिए। अपने मन को दंड देना चाहिए। लोग दूसरे के अपराध को तो सहते नहीं है, अपने अपराध को सह लेते हैं। थोड़ी सी बात हुई, क्या हो गया, हमने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, अर्थात अपने को क्षमा कर दिया, दूसरे को दंड देना चाहते हैं। नहीं नहीं, अपने को तो दंड देना चाहिए, दूसरे को क्षमा करना चाहिए। मनो वाक कर्म दंडंच, अपने मन को, अपने वाणी को और अपने कर्मों को सदा नियंत्रित करना चाहिए। भगवान का कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए और दारान सुतान गृहान प्राणान यत परस्मै निवेदनम, जो कुछ हमारे पास वस्तु है उस वस्तु को दूसरे के लिए समर्पित करना चाहिए। और जो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले हैं ऐसे महात्माओं के साथ सौहार्द करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, परिचर्या करनी चाहिए, ये परस्पर में भगवान की कथा कहनी चाहिए। परस्पर में ऐसा करने से मिथो रति और मिथो तुष्टि और निर्वृत्ति मिथा आत्मन है, ऐसे दोनों का एक साथ भगवान में प्रेम पैदा होगा। और भाई जब भगवान का स्मरण किया जाता है और कराया जाता है उस समय में भगवान क्या करते हैं कि दोनों के स्मरण करने और कराने वाले के कोई भी अज्ञान है उसको वे दूर कर देते हैं। सच पूछा जाए तो भक्त्या संजातया भक्त्या, भगवान में भक्ति करते हैं तो फिर भक्ति बढ़ती है। तो एक तो साधन भक्ति, एक साध्या भक्ति, एक उपाय भक्ति, एक उपेय भक्ति। तो कहते हैं कि भक्ति से वो भक्ति बढ़ती है जिसमें जिसका प्रभाव हमारे मन पर, इंद्रियों पर, बुद्धि पर बढ़ता ही रहता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, और ये सब लोगों को बिना दिखाए करता है, लोगों के सामने प्रकट होने नहीं देता। एक राजा थे जो मन ही मन में नाम लेते थे। स्वप्न में एक दिन उन्होंने राम का नाम ले दिया, दूसरे दिन पत्नी ने, उनकी महारानी ने बहुत बड़ा दान किया। दान किया, अभी क्या बात हुई, कैसे दान दे रहे हो, कि महाराज आज तो स्वप्न में आपके मुख से भगवान का नाम निकला, हम तो देखे आपके मुंह से नाम नहीं निकलता, आपके मुंह से नाम निकला है, मेरे मुंह से नाम निकल गया। ऐसे करते ही उनके श्वास, उनके शरीर से श्वास निकल गए, इतना वो गुप्त रखते थे। तो कहते हैं लोगों को दिखा दिखाने के लिए नहीं, लोगों के सामने दिखाने के लिए न तो आंख बंद करना है, न झूठे ही रोना है, और ऐसा यदि कभी किसी के सामने प्रकट भी होवे तो उसको छिपाना है। अपनी भक्ति को कैसे छिपाना चाहिए, भाई उपमा बहुत कठोर दी है शास्त्र में, शास्त्र में ऐसी कठोर उपमा दी है अपनी भक्ति को छिपाने के लिए, क्षमा करेंगे। वहां लिखा है कि मातृ जारवत गोप्यम, जैसे अपने माता का कोई व्यभिचार दोष है उसको हम छिपावे, ऐसे अपने भक्ति को छिपा के चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या मंत्र बोलते हैं, क्या हम नाम लेते हैं किसका, हाँ जिनके कारण से हमको आध्यात्मिक लाभ होता है उनको तो कहना चाहिए, और किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। लोक बाह्य है, सब लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो चलते हैं वे नारायण परायण होकर माया से तर जाते हैं। राजा पूछते हैं कि महाराज नारायण परायण हुए तर तो जाते हैं, लेकिन हम कैसे माने कि नारायण की कोई सत्ता है, भगवान की सत्ता है, भगवान है भी कि नहीं, कि केवल यूं ही लोगों को बहलाने के लिए ऐसी कह दिया, ऐसा लोग मानते हैं, क्या करें। निष्ठि आजकल इंद्रियों पर इतनी ज्यादा जम गई है, इस दृष्टि से परमात्मा समझ में आएंगे। तो जिन कारीगरों ने बनाया है, सूर्य बना, चंद्रमा बने, तारे बने, आकाश बना, पृथ्वी बनी, जीव जंतु बने, तो इनको कोई न कोई बनाने वाला है तभी तो बना है कि हाँ ये बात तो है, कि बस उसको हम भगवान बोलते हैं। कि और कोई प्रमाण, कि दूसरा प्रमाण यह है कि वो परमात्मा हमारे पास में है। कि हमारे पास कैसे है कि इसलिए है कि वो परमात्मा हमारे जागृत को जानते हैं। इस समय में ये जागृत अवस्था है, इस बात को जो जानने वाला वो परमात्मा है और स्वप्न देखने वाला है वो परमात्मा है। इसके बाद सुसुप्ति को कि न किंचित अवेदिशम सुखे न अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम सुखपूर्वक में सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। इस कुछ पता नहीं को जानता है वो परमात्मा है। जो शरीर को जानता है वो परमात्मा है, जो इंद्रियों को जानता है वो परमात्मा है, जो प्राणों को जानता है वो परमात्मा है, जो बुद्धि को जानता है वो परमात्मा है। पर याद रखना राजन, मन और लोगों और चीजों को जान सकता है परंतु मन परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए वहां तक मन नहीं पहुंचेगा, इंद्रियां नहीं पहुंचेंगी, प्राण नहीं पहुंचेंगे और शब्द भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो फिर हमारे पास तो जानने के साधन यही है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, यही तो है हमारे पास। कि आपके पास ये है तो ये परमात्मा के जानने के लिए नहीं है, तो कि जो जानने में आने वाला है उसका निषेध करने के लिए है। झाड़ू होती है वो आंगना बनाने के लिए नहीं होती, झाड़ू होती है वो आंगने पर आए हुए कचरे को दूर करने वाली होती है। झाड़ू से आंगना नहीं बनता, आंगना तो बना बनाया कचरा उसका हट जाता है तो आंगने का रूप निखर आता है। ऐसे ही किमिदं ब्रह्म न इति, किमिदं ब्रह्म न इति, यन मनसा न मनुते पर येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिसका मनन करता है वो नहीं, मन जिसके द्वारा मनन करता है वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है। शब्द भी सबका निषेध करता रहता है परंतु निषेध जिसकी सत्ता से करता है उसका नाम परमात्मा है। घर के अंदर कोई बैठा है, पूछे कि जी राधेश्याम जी है, क्या राधेश्याम जी नहीं है? तो राधेश्याम जी नहीं है, लेकिन जो ये कह रहा है कि राधेश्याम जी नहीं है वो भी नहीं है क्या? कि वो तो है, तभी तो निषेध किया है। ऐसे ही निषेध का जो परम आधार है, जिसने निषेध किया है वो निषेध करने वाला तो है ही, वही वास्तव में परमात्मा है। यदि वो निषेध करने वाला भी न हो तो यद रीते न निषेध सिद्धि, उसके द्वारा निषेध होवे ही नहीं। और बतावे, अरे परमात्मा नहीं है इस विषय में तो जो लोग मूर्ख हैं वो इतनी बात कहेंगे, हमको आंखों से नहीं दिखता, कानों से नहीं सुनता, ये मोटी मोटी बात कहेंगे, लेकिन परमात्मा के होने में तो इतने प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि जिनको आज तक कोई नट नहीं सका है, किसी प्रकार से उनका खंडन नहीं कर सका है। कहते हैं वही परमात्मा क्या है कि जब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तब वो तरह तरह के बन जाते हैं। देखते नहीं ये रासायनिक तत्वों को इधर उधर मिलाते हैं तो रंग कितना कितना बदल जाता है। पान खाने वाले जानते हैं कि पान के ऊपर एक तो पहले सफेद कत्था लगाते हैं, सफेद चूना लगाते हैं, और फिर एक दूसरा करके और एक कत्था लगाते हैं, उनका रंग अलग और उनका रंग अलग, लेकिन दोनों जब मिलते हैं मिलते ही एक बीच में ललाई यूं ही पैदा हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा क्या है कि वे ही परमात्मा जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को यूं पकड़ते हैं तो तब ज्ञानात्मा होकर तो महतत्व बन जाते हैं, क्रिया प्रधान होकर के वे सूत्रात्मा बन जाते हैं, और अहम प्रधान होकर के वे जीवात्मा बन जाते हैं। एक ही परमात्मा है वो। कथा और चूना इन दोनों में से कोई ललाई किसी में भी नहीं है, लेकिन दोनों के संयोग में जाने क्या है कि ललाई पैदा हो जाती है। ऐसे ही भगवान ही सूत्रात्मा है, भगवान ही ज्ञानात्मा है और भगवान ही जीवात्मा है। वही भगवान ही सब कार्य कारण जगत में दिखाई देते हैं, परंतु वे परमात्मा जो कि आत्मा के रूप में है, न तो मरते हैं और न वो पैदा होते हैं, न घटते हैं और न वो बढ़ते हैं, वे सबके साक्षी रहते हैं। बाल्य अवस्था में जो बालक था वो 60 वर्ष के बाद यही कहता है कि मैं वही हूं जो मैं पहले था। तो मैं वही हूं तो किस बात को लेकर कहते हैं? शरीर तो भाई वो नहीं रहा, लेकिन मैं वही हूं इसका मतलब उसकी सत्ता अनवरत चली आ रही है। और तो और भागवत में एक ही जगह मिलेगी ये बात, ध्यान से सुने। परमात्मा का लक्षण कहते हैं कि सर्वत्र, एक तो सब जगह है और एक शाश्वत माने निरंतर है, सब जगह है और निरंतर है, और साथ साथ में कहें कि परमात्मा उपलब्धि मात्रम, सबको मिले हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको परमात्मा मिले हुए नहीं है। जो मिलावा होता है उसी का नाम परमात्मा होता है, और जो मिल जो बिछुड़ जाता है वो मिलता ही नहीं है, तो उसको हम परमात्मा कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए राजन क्या बतावे, परमात्मा का कोई एक रूप थोड़ा ही है। देखो जरायुज स्वेदज अंडज और उद्भिज चार प्रकार के प्राणी देखते हैं हम ज्यादाकर। चारों प्रकार के प्राणियों में जो चेतना दिखाई देती है, चेतन तत्व है। लोगों ने समझा चेतना का मतलब हाथ पैर का हिलना, नहीं नहीं, ये तो प्राणों से होता है। चेतना का अर्थ होता है ज्ञान होना, शरीर का हिलना डुलना नहीं है तो कहते हैं इसमें चेतना नहीं है। नहीं, शरीर में चेतना का अर्थ है कि ज्ञान होना। तो ये जो हाथ पैर का हिलना डुलना करना ये प्राण धर्म है, लेकिन जो चेतना है, चेतना माने ज्ञान तत्व है, वो परमात्मा का स्वरूप है। कि जो परमात्मा सब इंद्रियों के अज्ञान में लीन हो जाने पर भी स्वयं जागते रहते हैं, कूटस्थ की तरह से रहते हैं, और जगने के बाद कहते हैं कि मैं वही हूं, बस उसका नाम परमात्मा है। कितना ही बड़ा संसार का कोई नास्तिक आ जाए, वो नास्तिक भी इस बात को तो नहीं कह सकता कि भाई मैं नहीं हूं, ऐसा तो वो नहीं कह सकता। वो कहेंगे आप हो तो आपकी सत्ता में क्या प्रमाण है, बताइए। कि हम है ना, हम शरीर है, तो शरीर तो भाई बदल गया आपका, मां से जन्म लिया ऐसा शरीर नहीं था, फिर भी आप हो, ये होने का नाम परमात्मा है। बताओ राजन, इसमें कौन अस्वीकार करेगा। यरियब जनाभ चरण शरण और भक्त्यारे, जब भगवान के चरणों के हम शरण स्वीकार करते हैं तब हमारा चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त से इस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। राजन ये आत्म तत्व है, ये केवल मुंह से बोल दिया कि हां परमात्मा नित्य है, कानों से सुन लिया कि परमात्मा नित्य है, ऐसे इसका बोध नहीं होता, इसका अनुभव करने से बोध होता है। अरे कह दिया कि गुड़ है, गुड़ का मिठास कैसे होता है, एक ने कह दिया मीठा होता है, सुनने वाले ने कह दिया कि हां मीठा होता है, क्या इतने से गुड़ का ज्ञान हो जाता है? गुड़ का ज्ञान मीठा कहने से और मीठा सुनने से नहीं होता, गुड़ के मिठास का ज्ञान तो चखने से होता है। इसी प्रकार से आत्म तत्व का ज्ञान आत्म तत्व का अनुभव करने से होता है। राजा ने कहा वाह महाराज, बहुत अच्छा बताया, ये तो भगवान के विषय में बड़ी अच्छी बात बताई। अब महाराज मुझे बताओ ये कर्मयोग क्या है। देखो भाई, अच्छा विषय चल रहा है तो बड़ी शांति से आप सुनेंगे, क्योंकि ये एकादश का विषय बड़ा बहुत ही सरस विषय है। हम तो ये एक मान शास्त्र संत महात्मा तो यहां तक मानते हैं कि भाई जो दशम स्कंद तक कथा सुनते आए हैं उनको यदि एकादश और द्वादश स्कंद नहीं सुना है तो वो कथा में कुछ कमी रह जाती है। इतना विचित्र ये एकादश स्कंद का प्रकरण है, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए और आगे भी सुनना चाहिए एकादश के प्रकरण को तो विशेषता से, क्योंकि हमारे जीवन की बात है। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये कर्मयोग है, ये क्या चीज है? एक बार हमने ऋषियों से पूछा था, सनकादि ऋषियों से पूछा था, तो उन्होंने हमको कर्मयोग के विषय में कुछ बताया नहीं। तो महाराज ये कर्मयोग के विषय में आप बताओ, अब ध्यान से सुनना। कर्मयोग के विषय में भागवत का मत और कर्मयोग के विषय में गीता का मत दोनों अलग अलग हैं। गीता के मत के अनुसार कर्मयोग का और स्वरूप है, भागवत के अनुसार और है। अपने गीता के संस्कारों से यदि भागवत को समझेंगे और मिलना तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं, गीता का कर्मयोग अपने आप में एक अद्वितीय है और भागवत का जो कर्मयोग है वो अपने आप में दूसरा है। आविर्होत्र ऋषि कहने लगे कि देखो जी, ये कर्म का विवेचन सामान्य नहीं है राजन। जब तुमने ब्रह्मा जी के बेटों से कर्मयोग का प्रश्न किया होगा उसमें तुम्हारी छोटी आयु रही होगी, क्योंकि कर्म अकर्म और विकर्म ये वेदवादो न लौकिक है, ये तो वेद के द्वारा निर्णय किया जाता है। केवल लौकिक कल्पनाओं के आधार पर इसका निर्णय नहीं कर सकते किसका कर्तव्य कर्म क्या है। तो लोग देख लेते हैं अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कि ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसा काम कर लो, ये हमारा कर्तव्य होगा, कि ना ऐसा नहीं चलेगा, शास्त्र कहेगा वो चलेगा, वेदवाद है न लौकिक है। शास्त्र कहता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने कर्म में लेश मात्र भी इधर उधर रद्दो बदल नहीं करना चाहिए, तो नहीं ही करना चाहिए, ये वैदिक आज्ञा है, शास्त्रीय आज्ञा है। कहते हैं वेदों में तो बताया है कि जी अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, तो फल की इच्छा बता दी ना, कि फल की इच्छा रख के काम करो, कि ना ना ना, यही बात है। वेदों ने जो बात बताई है कि अमुक कर्म करो और अमुक फल मिलेगा, ये बताया केवल कर्म मोक्षा है, ये कर्म से मुक्ति के लिए फल बताया। अर्थात जो लोग स्वाभाविक ही पाप कर्म करते हैं उन बाल उन बालकों को पुण्य कर्म में लगाने के लिए, अरे भैया हिंसा क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, ये काम करो ना तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो इनका अभिप्राय स्वर्ग की प्राप्ति में नहीं है, अभिप्राय निषिद्ध कर्म से निवृत्त करने में है। और निषिद्ध कर्म की निवृत्ति के लिए फल बता दिया, जैसे बच्चों को कहा जाए कि काढ़ा ले लो हम तुमको पतासा देंगे, तो माता का लक्ष्य यह नहीं है कि हम बालक को पतासा देवे मिश्री देवे, बालक का तो लक्ष्य एक काढ़ा पीले रोग दूर हो जाए। मिश्री तो उस बालकपन के स्वभाव के कारण से कह दिया कि इस लालच में ले लेगा। ऐसी स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए जो बात है वो तो केवल लालच के लिए कहा कि बालक के समान इनकी बुद्धियां हैं, विषयों में अटकी हुई है, इसलिए हिंसादि कर्मों से निवृत्त नहीं हो रहे। उनको बताया जाएगा कि अरे हिंसा से तुमको क्या मिलेगा, छोटी मोटी चीज मिल जाएगी, लेकिन यज्ञ करोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा, इस लोक में भी परलोक में भी तुमको अच्छी चीज मिलेगी। तो इस लोभ से वे अच्छे कर्म में लगता है, इसलिए वेद की आज्ञा है। वास्तव में सकाम कर्म कराने में वेद का तात्पर्य है ही नहीं। उसी वेद में यह बात बताई है कि मनुष्य को निसंगता से बिना किसी कामना से भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से भगवान की पूजा करें, कहते हैं पहले आचार्य का अनुग्रह प्राप्त करके और फिर भगवान की मूर्ति को जो है सामने रखे, स्वयं पवित्र होवे और फिर संयम आदि करके मूर्ति की पूजा करें। कहते हैं उस समय में जैसी वस्तु उसको मिल जाती है जिस देश में, उसी के द्वारा उसकी पूजा करें। पाद्यादीन अनुकल्प्यात है, सन्निधाप्य समाहित है, भगवान के स्वरूप को जहां भी रखें, चरण हाथ वगैरह सब आराम से जिस प्रकार से दर्शन हो सके इस ढंग से उनको स्थापित करें। और फिर अंगन्यास करें, भगवान के पार्षदों की पूजा करें, गंध है, माला है, अक्षत है, इन सब वस्तुओं से भगवान की पूजा करें। इस प्रकार का जो पूजा करने का काम है ये कर्मयोग कहलाता है। राजा पूछते हैं कि महाराज भगवान ने तो तरह तरह से अवतार लिया है, जरा भगवान के अवतारों के विषय में सुनाइए। तो सातवें ऋषि बोलने लगे कि अरे भैया भगवान के अवतारों को कैसे कोई सुनेगा और कैसे कोई गिना देगा, भगवान के अवतार को कोई गिना ही नहीं सकता है। देखो जितने जीव जंतु भगवान से पैदा हुए हैं, कितना तो स्वर्ग पैदा हो गया, कितनी बार प्रलय हो गया, फिर कितनी बार स्वर्ग हो गया, कितनी बार प्रलय हो गया, उनमें कितने जीव हुए वे सब भगवान ही तो है। अब बताओ एक एक जीव के कितने कितने कर्म है। एक आदमी से कहा जाए कि भाई जब से तुमने माता से यहां जन्म लिया है तब से लेकर आज तक तुमने जो कर्म किया है बताओ, है कोई माई का लाल जो बता दे कि मैंने इतना कर्म किया, नहीं बता सकता वो। तो अपने जीवन का कर्म भी मनुष्य नहीं बता सकता तो फिर भगवान के कर्मों को कौन गिना सकता है, कौन बता सकता है भाई, नहीं बता सकते। हाँ इतना जान सकते हैं कि भगवान रजोगुण को लेकर, ब्रह्मा को लेकर के संसार को बनाते हैं, वे ही भगवान विष्णु होकर पालते हैं और रुद्र होकर के भगवान अपने में सबको लीन कर लेते हैं। तरह तरह से अवतार हुए। अरे तुमको एक ऐसे विचित्र अवतार की कथा सुनाऊं, देखो कहते हैं धर्म की एक बेटी थी मूर्ति, उसके यहां नर नारायण ने अवतार लिया, नर नारायण भगवान ही बनकर के आए। वे उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने लगे और वहां पर तपस्या करते हुए सबको ये शिक्षा देते हैं कि भाई अपने काम तो करते रहो, वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र की जो आज्ञा है वो आज्ञा का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो, जरूर करो, लेकिन कर्म से किसी फल को मत बांधो न खुद बंधो। कर्म करना ही हमारा काम है, उसके फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नैष्कर्म लक्षणम उवाच चचार कर्म, इस प्रकार से वो कर्म कर रहे हैं और वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन मूर्ख इंद्र के मन में ये आया कि ये नर नारायण तपस्या करके मेरा इंद्रासन ले लेंगे, तो उन्होंने कई अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, वसंत ऋतु को भेजा और जाकर के कहा कि इनकी तपस्या में बाधा डालो। अब भाई ये सब के सब गए तपस्या में बाधा डालने के लिए। अब मिट्टी का लोंदा होता है वो तो पानी के पड़ने से फूटता है, लेकिन पत्थर थोड़ी फूट जाए। नर नारायण के सामने खूब हाव भाव किए, नाचे नचाए, लेकिन भगवान का नर नारायण का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो सब आकर के नर नारायण के चरणों में गिर गए, जितने अप्सराएं थी और थे देवता, सब आकर के चरणों में गिर गए कि महाराज हमारे समझने में भूल हो गई, जो आपके चरणों का सहारा ले लेते हैं उन पर भी हमारी माया नहीं चल सकती, तो फिर आपके ऊपर तो माया चलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हम तो महाराज इंद्र के बहकाए बहकाए आ गए और आपको तरह तरह से हम तपस्या में बाधा डालने लग गए, लेकिन हम आपको लुभा नहीं सके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको मोहित करने आए थे, नहीं हुए आपने हमको मोहित कर लिया। कैसे कर लिया? कि हमने देखा है कि जिसका कोई बिगाड़ करता है तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, तो जिसका बिगाड़ करते हैं वो क्रोध तो कर ही लेता है, और आप ऐसे हो कि हमने आपका बहुत बिगाड़ किया, तरह तरह से तपस्या में बाधा डाली, लेकिन आपने क्रोध से यान्ति विफलस्य वशं पदे गौर, आप बिल्कुल क्रोध के वशीभूत नहीं हुए, आप तो उस क्रोध को भी लांग गए, क्रोध को भी जीत लिए। हमने तो केवल एक काम को देखने के लिए, आपके काम को जगाने के लिए आए थे, काम तो आप में है ही नहीं, क्रोध भी आप में नहीं है, इसलिए महाराज आप जैसी तपस्या आप ही कर सकते हैं, महाराज कृपा करो हमसे गलती हो गई। अरे 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 गलती नहीं हुई, ठहरो 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 ठहरो। नरनारायण ने कहा कि देखो आप लोग मेरे आश्रम में आए हो और आपने देवलोक छोड़ करके यहां आने का कष्ट किया है, तो ऐसा करो, बेचारा इंद्र हमसे डरता था इसी कारण से आपको भेजा है, इतनी अप्सराओं को इंद्र ने हमारे पास भेजा है, अब थोड़ा हमारा भी तुम पराक्रम देखो, देखो हमारे पास कितनी अप्सराएं हैं, इन अप्सराओं में से जो आपको अच्छी लगे सो इंद्र को ले जाके दे देना। उसी समय में नरनारायण ने अपने विलक्षण ऐश्वर्य से सैकड़ों की संख्या में अप्सराएं प्रकट कर दी, और एक एक अप्सरा इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सराओं में श्रेष्ठ है, हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वो स्वयं अप्सराएं देखने लगी, अरे ये तो हमसे भी श्रेष्ठ है, घबरा गई सब। नरनारायण ने कहा अच्छा इनमें से एक ले लो, तब उन्होंने एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी उसको लिया और ले जाकर के इंद्र के पास में कहा, महाराज हम तो गए थे ठगने के लिए, हम स्वयं ठगे और एक अप्सरा आपके लिए और भेजी है। इंद्र ने देखा, वाह ऋषि ने हमारी तमाचा मारा है, कम नहीं मारा है, बहुत कस करके मारा है, ऐसे नरनारायण के पास और इनके भक्तों के पास हमको अब आज से कभी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान की बहुत लीलाएं हुई हैं। कहते हैं कि भगवान की लीलाओं में वही कुछ तो ज्ञान प्रधान हुई है और कुछ कर्म प्रधान हुई है। भगवान ने हंस के रूप में ज्ञान दिया है, दत्तात्रेय के रूप में ज्ञान दिया है, सनत कुमार के रूप में ज्ञान दिया है, ऋषभ देव जी के रूप में ज्ञान दिया है, वेद व्यास के रूप में ज्ञान दिया है, ये सब भगवान का ज्ञान है, ये लीलाएं हैं, ये ज्ञान प्रधान लीलाएं हैं। संसार में ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए भगवान लीला करते हैं। अरे किनके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे चलेंगे, व्यवहार ही नहीं होगा, लौकिक व्यवहार भी नहीं होगा, तो ज्ञान तो सबसे पहले है। मोटर हम चलाना चाहते हैं लेकिन लाइट नहीं हो, तो चाहे कितने अच्छा इंजन हो, कितने अच्छे ब्रेक हो और कितने अच्छे हमारी मोटर हो, रूप रंग में कितनी अच्छी हो, नई की नई मोटर है, लेकिन लाइट नहीं है तो मोटर को कोई अंधेरे में नहीं चलाएगा। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी ये मोटर है, इसमें ज्ञान रूपी प्रकाश अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भगवान कई रूपों से अवतार लेते हैं ज्ञान का विस्तार करने के लिए। वे ही भगवान मत्स्य रूप से रक्षा करते हैं, सुवर रूप से पृथ्वी का उद्धार करते हैं, कूर्म रूप से अमृत का मंथन करते हैं, वे ही भगवान ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिए हैं, वे ही भगवान खंभे से अवतार लिए हैं, वे ही भगवान नृसिंह के रूप से अवतार लिए हैं, वही वामन रूप से अवतार लिए, वही सीताराम के रूप में अवतार लिए हैं, वही कृष्ण के रूप में अवतार लिए, क्या बतावे उनकी लीला कम थोड़ी हुई, बहुत उनकी लीलाएं हुई। वही आगे जाकर बुद्ध बनेंगे और वही आगे जाकर कल्कि बनेंगे। राजा ने कहा कि महाराज जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी आगे जाकर क्या दशा होगी, कि राम 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 राम। मानव शरीर प्राप्त किया, भगवान के शरीर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हुए, और गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी और ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी ये चार आश्रम वाले भी पैदा हुए। लेकिन ऐसे लोग यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो अपने स्थान से गिर जाते हैं। इसलिए भाई जितना ज्यादा हो सके लोगों को भगवान की तरफ लगाना चाहिए। जो लोग भगवान की कथा से दूर है उन लोगों के ऊपर भी आप जैसे राजाओं को कृपा करके भगवान की कथा सुनवानी चाहिए, भगवान का नाम करवाना, भगवान का नाम लेना चाहिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन लोगों को अपने जन्म का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।